सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं साहुवज्रायिरे अरहन्ते वन्द्युणसिद्धेवि जे पञ्चलोगवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित दौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आठवीं पुस्तक जो तृतीय खंड है, बंध स्वामित्व विचय, उसमें हम 94 पृष्ठ पर आ गए हैं। 94 देखो, उसके पहले के पेज पर जरा देखते हैं, 93 पृष्ठ पर। यहां से अभी आदेश की अपेक्षा कथन शुरू हो जाता है। पहले हमने ओग की अपेक्षा ने गुणस्थानों में कौन से बंधक है, कौन से अबंधक है, कहां से कहां तक बंध होता है, उसके प्रत्यय कौन से, आदि आदि अनेक बातें देखी थी। अब यहाँ ये सारी ही चर्चा मार्गणा की अपेक्षा चलेगी। जैसे गति मार्गणा में नरक गति की बात करेंगे, फिर नरक गति में गुणस्थान लगाएंगे। पहले नरक गति में बंध योग्य प्रकृति बताएंगे, और फिर उसमें भी पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान वाले कौन कौन से प्रकृतियों का बंध करते हैं, ऐसा उल्टा करेंगे, या इन प्रकृतियों के बंधक कौन है, उनकी विच्छित्ति कहाँ होती है, इस तरह से अभी हम मार्गणा स्थान की अपेक्षा बात चलेगी। उसमें हमने 43 पृष्ठ पर जो सूत्र पढ़ा था, 43 नंबर का सूत्र पढ़ा था 93 पृष्ठ पर, वो लिस्ट जरा देखते। फिर देखो, आदेश की अपेक्षा यानी अभी मार्गणा की अपेक्षा, गति मार्गणानुसार नरक गतियों में, गति में नारकियों में 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण। देखो ये 9 दर्शनावरण को नहीं लिया है, 6 को ही लिया। क्यों? देखो पहले लिस्ट पढ़ देंगे, फिर आपको ख्याल आएगा क्यों। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, 12 कषाय, ये 12 भी क्यों लिए, 4 कौन से छोड़े, उसकी भी चर्चा मैं पूछूंगी आपको प्रश्न। पुरुष वेद, हास्य रति अरति, अकेला पुरुष वेद, ये बंधने वाली प्रकृतियों की बात चल रही है, तो स्त्री वेद नपुंसक वेद को नहीं लिया यहां, ये क्यों, ऐसा प्रश्न मन में रखना। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति, तिर्यंच गति भी नहीं लिया यहां पर, उसको भी छोड़ा है, क्योंकि नारकी तो बांधते हैं तिर्यंच गति को भी, है ना, तो कुछ कुछ प्रकृतियों को छोड़ा है, वो क्यों, ऐसा सवाल मन में रखेंगे हम। औदारिक तेजस व कारमान शरीर, समचतुरस्र संस्थान, अन्य भी संस्थानों को छोड़ा, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रर्षभ सहनन, अन्य सहनन को भी छोड़ा, वर्ण गंध रस स्पर्श, मनुष्य गति प्रायोज्ञानपूर्वी, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहायु गति, अप्रशस्त को छोड़ा यहाँ पर, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, वो तो नारकी तो इन्हीं को बांधते, यानी इसमें कुछ छोड़ा नहीं है, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि स्थावर को छोड़ा, क्योंकि नारकी जी इसको बांधते ही नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं था। सिर सिर शुभ अशुभ सुभग सुस्वर, यहाँ भी दुर्भगों को नहीं लिया, दुस्वर को नहीं लिया है, आदेय को लिया, अनादेय को नहीं लिया है, यश कीर्ति अयश कीर्ति दोनों को लिया है, निर्माण उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इन कर्मों का कौन बंधक और कौन अबंधक है, इसमें भी नीच गोत्र वाले को छोड़ा। अभी हमने यहाँ कुछ कुछ प्रक्रिया देखी है कि उसके अपोजिट वाली प्रकृतियाँ यहाँ नहीं ली है और इन सबको एक साथ ग्रुप किया है, बराबर। अब इसका अगला वाला सूत्र, इसके जवाब अगर हम देखते हैं तो ये इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्या लिखते हैं अगले सूत्र में? मिथ्या दृष्टि को आदि देकर असंयत सम्यक दृष्टि तक बंधक है। अब मेरे प्रश्न का सवाल, मैंने जवाब देना, आप सवाल नहीं जवाब, कि हमने छह ही दर्शन आवरण लिए थे, तीन छोड़ दिए थे, पुरुष वेद को ही लिया था, अन्य दो वेद को नहीं लिया था, अभी मनुष्य गति को ही लिया था, तिर्यंश गति को नहीं लिया था, ये जितने छोड़े ना, प्रशस्त व्यूह गति को लिया, अप्रशस्त को नहीं लिया, ऐसा क्यों? ये जो ग्रुप बनाया है उसमें इतने सारे प्रकृतियों के बंधक को क्यों छोड़ा? और बारह कषाय कौन से लिए? कि नारकी क्या बारह ही कषाय को बांधता है? हाँ, सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि हमने क्या देखा उत्तर में, मिथ्या दृष्टि से लेकर चतुर्थ गुणस्थान तक के बंधक देखे, इन सबको इकट्ठा करके चौथे गुणस्थान तक बंद होता है ऐसा लिखना था। तो चौथे गुणस्थान वाले को अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता है, अभी वो मिथ्यात्व सासाधन वाले को होगा तो और बाद में बताएंगे। यानी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में इन बारह कषायों के अलावा और चार कषाय अनंतानुबंधी भी बंधेंगे, इनको इकट्ठा करना था ना, इसलिए जिन जिन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति मिथ्यात्व में या सासाधन में हो जाती है उनको इस ग्रुप में लिया ही नहीं। ऐसा ही ग्रुप बनाया उन्होंने कि जिसका बंध चौथे गुणस्थान में हो सके। क्या ना, क्यों ये ऊपर क्यों छोड़ा? क्योंकि नारकियों को भी नपुसक वेद बंधेगा, स्त्री वेद भी बन सकता है, पुरुष वेद भी बन सकता है। यहाँ अकेले पुरुष वेद क्यों लिया? क्योंकि हमको नारकियों के चारों गुणस्थानों में बंधने वाली प्रकृतियों की बात करनी थी। चौथे गुणस्थान की अपेक्षा जिन जिन प्रकृतियों का बंध होता है उसका ग्रुप बनाया, तो चौथे में वो बंधनी चाहिए, इसलिए बारह कषाय लिए, अनंतानुबंधी को छोड़ा, वो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन को रखा। जिसको छोड़ा है उसको कहेंगे पहले और दूसरे गुणस्थान में बनते हैं। अब यहाँ बात है मनुष्य गति को बांधते हैं चौथे गुणस्थान वाले, अभी इसमें भी कोई ऑप्शन होगा तो बताएंगे बाद में। छह दर्शन आवरण लिए, तीन दर्शन अभी पहले से देखते किस किस को छोड़ा। पांच ज्ञान आवरण तो सभी गुणस्थानों में चारों ही में ही बनते हैं। नौ दर्शन आवरण में से नौ कहाँ तक बनते? पहले में और दूसरे में बनते। दूसरे में तीन की विच्छित्ति होती है ना, स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, इसलिए तीसरे और चौथे में छह छह प्रकृतियां ही बनती है, इसलिए यहाँ छह रखी। जो तीन बनती है वो मिथ्या तो सासाधन वाले में कह देंगे और एक्स्ट्रा वो भी बनती है करके, क्योंकि वो तो ध्रुव बंदी है, पहले और दूसरे गुणस्थानों में तो बंधेगी ही, परंतु यहाँ चौथे तक कौन सी बन रही है उसकी बात चल रही है। अब साता असाता दोनों का ही बंध होता है, क्योंकि असाता का बंध तो छठे तक है, तो यहाँ चारों ही गुणस्थानों में उनका बंध होता है। बारह कषायों का बंध तो पहले से लेकर चौथे तक होता ही है, पहले और दूसरे में और एक्स्ट्रा सोलह कषायों का हो जाएगा ना, यानी चार और बढ़ेंगे उसमें अनंतानुबंधी वाले। ख्याल में ना, ये ऐसा ग्रुप क्यों बनाया उन्होंने? आगे कहते पुरुष वेद, तो हाँ चौथा गुणस्थान वाला तो पुरुष वेद को ही बांधेगा, तीसरा वाला भी, क्योंकि पहले गुणस्थान में ही नपुसक बंध के वेद के बंध की विच्छित्ति होती है और दूसरे में स्त्री वेद के बंध की विच्छित्ति होती है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये तो आगे चलकर बनते हैं, तो इसलिए ये सारे ही बनते हैं। मनुष्य गति को लिया, नारकी जीव मनुष्य गति को भी बांध सकते हैं, तिर्यंश गति को भी बांध सकते हैं, परंतु ये ऑप्शन कहाँ तक है? पहले और दूसरे गुणस्थान वाले के लिए। यह सातवें नरक में वो तो अलग से बताएंगे, उसकी बात अभी नहीं उठाएंगे हम, तो ये मनुष्य गति को ही बांध रहे हैं, क्योंकि ये चौथे तक की हमको समानता देखनी है, चौथे तक जो कुछ प्रकृतियां बनती जाती है उसको लेना है। पंचेंद्रिय जाति को ही नारकी बांधते, उसमें तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं। औदारिक को ही बांधते, तेजस कारमा तो ध्रुवबंदी है। अब समचतुरस्र संस्थान, सम्यक दृष्टि जीव समचतुरस्र संस्थान को बांधेगा, पहले और दूसरे, पहले वाला तो छह संस्थान में से कोई भी बांधेगा, दूसरे में वो बीच वाले चार की विच्युति होती है, तीसरे चौथे वाला समचतुरस्र संस्थान को ही बांधता है। औदारिक शरीर अंगोपांग, ये तो हमेशा ही बंधेंगे नारकियों को, क्योंकि औदारिक शरीर का बंध है और वो पंचेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, तो अंगोपांग नाम कर्म भी बंधेगा। वज्रषभ सहनन, ये भी चौथे की अपेक्षा लिखा, तीसरे चौथे की। वर्ण गंध रस स्पर्श, ये तो सबको ही हमेशा ही बनते हैं, क्योंकि ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। मनुष्य गति प्रायज्ञानपूर्वी, जो मनुष्य गति के साथ तो यही प्रायज्ञानपूर्वी बनती है, इसको भी लिया। अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, अभी इसमें तो कोई प्रतिपक्षी है नहीं है। प्रशस्त विहाय गति, ये प्रशस्त लिया इसलिए अप्रशस्त विहाय गति के बंध की विच्छित्ति दूसरे में होती है, इसलिए चौथे वाले को तो ये बंधेगी। फिर त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, ये तो सभी नारकियों को सभी गुणस्थानों में बंधेगी। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, ये तो प्रतिपक्षी वाली प्रकृतियां हैं, परंतु उनका बंध का विच्छित्ति नहीं होती, इसलिए दोनों को रखा। चौथे वाले को दोनों का बंध है, कभी स्थिर का है कभी अस्थिर का है, इसलिए। सुभग सुस्वर आदेय लिया, क्योंकि दुर्भग दुस्वर और अनादेय के बंध की विच्छित्ति दूसरे में होती है, इसलिए तीसरे चौथे वाले को तो यही प्रकृतियां बंधेगी। यश कीर्ति अयश कीर्ति, अयश कीर्ति का बंध कहां तक देखा था याद है? हाँ, जनरल बात है, गुणस्थानों में छठे तक, यानी यहाँ चौथे गुणस्थान वाला नारकी भी यश कीर्ति अयश कीर्ति दोनों को बांध सकता है, इसलिए इन दोनों को रखा यहाँ। ये बंध की बात चल रही उदय की नहीं हो। हाँ, निर्माण तो वो ध्रुवबंदी है, हर समय हर एक को बनती है। उच्च गोत्र, ये भी नीच गोत्र के बंध की विच्छित्ति दूसरे में होती है, और पांच अंतराय तो सबको ही बंधेंगे, वो तो ध्रुवबंदी प्रकृति है। तो इन कर्मों का कौन बंधक है, तो इसलिए इनको सबको इकट्ठा लेके मिथ्या दृष्टि से लेकर चतुर्थ गुणस्थान तक, नारकियों की बात चल रही है अभी। अभी हमारा पहला क्राइटेरिया हमने रख दिया, अभी बार बार उसको कहेंगे भी नहीं। तो नारकियों में चार गुणस्थानों के जीव इसको बांध रहे, ये बात हो रही, ये तो हमने कल देखा था। अभी यहाँ देखते अगले पृष्ठ पर, 94 पृष्ठ पर। अभी इसमें हमने पहले देखा था कि बंध पहले रुकता है क्या, उदय पहले रुकता है, ये बात आई थी ना। तो इसमें से हम हर एक प्रकृति की चर्चा की थी, जैसे ज्ञानावरण का ना बंध रुकता है ना उदय रुकता है, तो उसकी कोई चर्चा का सवाल ही नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकृतियों के लेके हमने विस्तार से चर्चा कल की थी। अब यहाँ हम 94 पृष्ठ पर जो नीचे का पैराग्राफ है वहां देखेंगे, ये स्वोदय से बनती है कि परोदय से, इसकी चर्चा करेंगे। पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, दर्शन हुआ है वो दर्शनावरणीय, पंचेंद्रिय जाति, तेजस्व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु, त्रस बादर पर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अयश कीर्ति, निर्माण और पांच अंतराय, इनका स्वोदय बंध है। इसका अर्थ है इन सबका उदय हर समय चल रहा है, नारकियों की बात चल रही है ना। ज्ञानावरण का उदय हो रहा है, चार दर्शनावरण का तो उदय है ही, निद्रा का तो ऑप्शनल है, इसलिए ये तो जो चार बन रही हो तो बनती ज्यादा है, पहले दूसरे वाले को तो 9 के 9 बंधेगी। तो जो स्वोदय परोदय दोनों में बनती उसकी बाद में करेंगे, अभी स्वोदय से ही बंधने वाली को पहले लिया, तो चार को लिया, यानी निद्रा में हो। हाँ, ये तो ध्रुवबंदी है ना, तो इनका उदय तो निद्रा में भी चल रहा है, ये चार जो प्रकृति है दर्शनावरण की, चार चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, इनका तो उदय हो ही रहा है हर समय, तो इनका बंध भी हर समय हो रहा है, इसलिए इसको स्वोदय से बनती ऐसा कहा। पंचेंद्रिय जाति का उदय भी है और बंध भी है, स्वोदय से बंध रहा। तेजस और कारमान शरीर का भी उदय हर समय चलता है और बंद भी चल रहा है। वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु ये सब ले लेना इसमें, ये सभी हर समय इनका उदय चल रहा है। यश की अयश कीर्ति भी इसी का उदय होता है। नारकियों को, नारकियों में यश कीर्ति का उदय नहीं होता है, बंद भले हो इसलिए अयश कीर्ति का उदय है। और जब अयश कीर्ति बनती है तो हम कहेंगे स्वोदय से बनती है। यदि कोई नारकी यश कीर्ति का बंद करता है तो उसको कहेंगे ये परोदय में बन रही है। ख्याल है? देखो स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ ये तो ध्रुव उदयी प्रकृति है, ध्रुवोदयी प्रकृति है। ये तो हर एक को हर समय उसका उदय चलता है 13वें गुणस्थान के अंत तक, परंतु बंधने में कभी स्थिर बंधेगी कभी अस्थिर, क्योंकि वो प्रतिपक्षी प्रकृति है। बंधने में प्रतिपक्षी, उदय में नहीं। उदय तो हर समय चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है। ये शुभ से साता नहीं होता है ना, ये शुभ अशुभ और स्थिर अस्थिर अलग प्रकृतियां हैं। हाँ, उसके असाता का उदय अभी वो बात आएगी आगे। देखो अब कहते हैं ये असाता की बात अब आएगी जो हमने कल पढ़ी थी। देखो ये तीन वाक्य तो हो गए, स्वोदय बनने वाली तो प्रकृति और ख्याल में आ गए। अब अगला वाक्य, निद्रा प्रचला साता व असाता वेदनिया, इस पर से बात चली कि वो जहाँ ऑप्शनल उदय पॉसिबल है उसकी बात यहाँ है। निद्रा प्रचला, क्योंकि निद्रा और प्रचला का बंध तो हो रहा है, मतलब जागृत अवस्था में भी होगा या निद्रा में भी होगा, तो स्वोदय से भी बंधेगी और परोदय से भी बंधेगी। वैसे साता और असाता वेदनिया, बंध भी ऑप्शनल है और उदय भी ऑप्शनल है। नहीं, कल बात आई थी ना, यही उसी की हमने चर्चा की थी। साता का भी उदय कहीं होगा किसी के, जैसे तीर्थंकरों के जीव है और वो अंतिम आयु बनती है मनुष्य है ना अरविंद भाई, तभी उनके तो असाता का उदय नहीं रहता उनके। हाँ, और भी तीर्थंकरों का जन्म होता है तो तीनों ही लोकों में वो तो उतने समय कुछ समय उनके लिए साता हो जाती है। अंतर्मूर्त है। देखो 12 कषाय स्वोदय परोदय का अर्थ होता है क्रोध का उदय चल रहा है और क्रोधमान माया लोभ सभी बन रहे हैं। ये जो हमने ग्रुप देखा था उसमें 12 कषाय की बात की इसलिए 12 लिया है। मिथ्या दृष्टि के लिए हम कहेंगे 16 कषाय उनका बंद हो रहा है, वो भी स्वोदय परोदय से। हमने जो अभी ग्रुप देखा है 4th तक बंधने वाले की, उस अपेक्षा से 12 कषायों को लिया है। नहीं तो हमें लगेगा कि ये क्या नारकी 12 कषायों को बांधते हैं क्या, ऐसी बात नहीं है। 4th गुणस्थान वाले 12 को बांध रहे हैं इसलिए 12 को अलग निकाला। हास्यरति अरति शोक भय जुगुप्सा ये प्रकृतियां स्वोदय परोदय से बनती है, क्योंकि इनका सब गुणस्थानों में परिवर्तित उदय रहता है। परिवर्तित उदय ने जैसे हमने प्रतिपक्षी बंध में प्रतिपक्षी देखा, वैसे उदय में भी कभी साता का कभी असाता का, तो और कभी ये क्रोध का कभी मान का, वैसे कभी हास्यरति का कभी शोकरति का, इस तरह से उसका उदय देखा जाता है बदल बदल कर। जैसे हमने बंध में देखा प्रतिपक्षी कभी इसका बंध कभी उसका बंध, वैसे उदय में जो है परिवर्तन होता है उसको कहते हैं परिवर्तित उदय। अब यहां से हम पढ़ेंगे, कल यहां तक तो पढ़ा था। उपघात प्रकृति मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थानों में स्वोदय परोदय से बनती है, क्योंकि विग्रह गति में इसका उदय नहीं रहता। उपघात प्रकृति का उदय विग्रह गति में नहीं होता है, वो मिश्र अवस्था में वहां जाते ही उदय शुरू हो जाता है उपघात का। जैसे औदारिक शरीर संबंधी होगा या कहीं कहीं जो कुछ है, अभी यहाँ नारकियों के बारे में प्रत्यक्ष शरीर नाम कर्म है वैक्रेक है आदि जो वहां से शुरू होता है उसका, वैसे यहाँ भी उपघात जो है वो विग्रह गति में उदय नहीं है फिर भी बंद है, तो वहाँ वो परोदय से कहेंगे, बाद में उदय है और बंद है तो उसको सोदय से कहेंगे। सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में यही प्रकृति स्वोदय से बनती है, क्योंकि सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों की नारकियों में उत्पत्ति नहीं। ये ख्याल में आए क्यों? देखो, अन्य गति की अगर बात करेंगे तो सासादन के लिए भी हम कह सकते हैं कि वो उपघात का उदय विग्रह गति में नहीं होता, इसलिए विग्रह गति। अन्य अभी मनुष्य गति की बात करेंगे तो हम वहाँ क्या कहेंगे कि कोई दूसरा गुणस्थान वाला मनुष्य में आया ना, सासादन में कहीं से मरकर मनुष्य में आया, तो उसके विग्रह गति में भी उपघात का उदय नहीं है और उपघात बंद रहा है। ये बात हम सासादन नारकी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि नारकी में वो अपर्याप्त अवस्था में सासादन होता ही नहीं है। नारकियों में सासादन होगा तो पर्याप्त होने के बाद होगा, क्योंकि सासादन वाला मरकर नरक में नहीं जाता, इसलिए उसके लिए ये विग्रह गति में सासादन गुणस्थान होवे और नरक गति होवे ऐसा बन नहीं सकता। इसलिए पहले मिथ्या दृष्टि और असंयत को एक साथ लिया विग्रह गति वाले। दूसरी भाषा में हम कहेंगे, विग्रह गति में जो नारकी है उनमें कौन कौन से गुणस्थान पाए जाते हैं? पिना क्या कहा मैंने? विग्रह गति के नारकी ने कहीं से मरकर नरक में जाने, तिर्यंच या मनुष्य मरकर नरक में जाते हैं तो मरकर नरक में जाते हैं, यानी विग्रह गति में उनके कौन कौन से गुणस्थान पॉसिबल है? पहला तो पॉसिबल है, क्योंकि पहले में मरकर तो नरक में जाने वाले बहुत सारे हमें मालूम भी है, जाते भी रहते हैं। और कोई गुणस्थान होगा? नहीं होगा। आप क्या कहते प्रेरणा बहन? हाँ, चौथा समय दृष्टि होगा ना, पहले नरक में जाने वाला क्षायिक समय दृष्टि जीव। नरक में जाने वाले क्षायिक हो तो जाएंगे, या कृतकृत्य वेदक, तो उनके भी विग्रह गति में चौथा गुणस्थान है, बराबर। इसलिए भी यहाँ देखो, नीचे से चौथी लाइन में लिया है, मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि लिए, दो गुणस्थान लिए, दूसरा और तीसरा टाला नहीं लिया, पहला और चौथा लिया विग्रह गति वाले में। उनके लिए विग्रह गति है तब तक उपघात का उदय नहीं रहता है, किसी को भी नहीं रहता, इनके भी नहीं है, तो वहां पर्याप्ति शुरू होते ही उपघात नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है और वहां उपघात बनती भी है। विग्रह गति में उपघात का उदय नहीं था और बंद रही थी, होता ही नहीं। विग्रह गति में उपघात का उदय नहीं होता है, परंतु उपघात प्रकृति तो ध्रुव बंदी है, हर समय बनती है। अगुरु लघु उपघात हर समय बनने वाली प्रकृति है, तो जब विग्रह गति में उसको क्या कहेंगे? ये परोदय से। परोदय ने उसका जोड़ी वाला कोई अन्य का उदय है ऐसा नहीं लेना वहां, यानी उपघात के बदले परघात का उदय होता ऐसा नहीं है, अपना उदय नहीं उसको कहेंगे परोदय से बनती है। और जब उदय शुरू होता है बाद में तो निरंतर उदय है, वो तो पर्याप्ति शुरू होने पर मरण तक उदय रहेगा, तो उदय में बनती है, तो वहां कहेंगे स्वोदय से बनती है। ये दो गुणस्थानों में एप्लीकेबल है, पहले में और चौथे में। दूसरा और तीसरे गुणस्थान वाले तो नारकी में संभव नहीं है, अपर्याप्त विग्रह गति में, विग्रह गति में संभव नहीं है। नारकी जो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं वो गिरकर दूसरे में भी आ सकते हैं, तीसरे में भी जा सकते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, विग्रह गति वाले नारकियों की बात है। देखो, सासादन समय दृष्टि, आपका प्रश्न है दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव मरकर नरक में क्यों नहीं जाते? ऐसा स्वभाव है, क्योंकि ऐसा भी हमने देखा है ना। नहीं, बंद की विच्छित्ति होती है, परंतु अभी नरक गति के बंद की विच्छित्ति होती है, फिर भी चौथे वाला मरकर नरक में जाता है, वो बंद वाला यहाँ नहीं एप्लीकेबल, फिर भी वो सासादन वाला नहीं जाता, ऐसा ही उसका स्वरूप है उस गुणस्थान का मरकर। देखो यहाँ नीचे से तीसरी लाइन, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में यही प्रकृति यानी उपघात प्रकृति स्वोदय से बनती है, क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों की नारकियों में उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति नहीं है यानी मरकर आने वाले नहीं है, परंतु नारकी जीव इन गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं बाद में, उत्पत्ति नहीं इसलिए वहां विग्रह गति वाला प्रकरण यहाँ कुछ एप्लीकेबल नहीं। अब परघात उच्छ्वास और प्रत्येक शरीर प्रकृतियां मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में स्वोदय परोदय से बनती है। अब हम पढ़ने के पहले देखेंगे इसको भी वैसे उपघात जैसे ही स्वोदय परोदय कहा, किसको, परघात को, उच्छ्वास को और प्रत्येक शरीर को। तो पर्याप्त जीवों में तो ये तो हर समय इसका उदय चल रहा है, तो वहां तो स्वोदय से बनती है। तो ऐसा कोई, ऐसी कोई जगह है कि इनका उदय नहीं है और फिर भी बन रही है? हाँ, क्योंकि ये जो परघात का उदय कब शुरू होता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर परघात का और विहाय गति का एक साथ उदय होता है, हमने देखा था पहले। हा? और उच्छ्वास का उदय कब होता है, उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर, परंतु उसके पहले उच्छ्वास बन रहा है, परघात भी बन रहा है। तो जहां उदय नहीं होने पर भी बन रहा है वहां हम कहेंगे ये परोदय से बन रहे हैं। प्रत्येक शरीर नाम कर्म की भी बात यही है, विग्रह गति में प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहता, वहां पहुंचते ही पहले ही समय है जो पर्याप्ति का पहला ही समय, तो वहां इसका उदय शुरू हो जाता है प्रत्येक शरीर नाम कर्म का। इसलिए उसको भी जैसे उपघात में एप्लीकेबल है वैसा ही यहाँ पर प्रत्येक। हाँ देखिए, आपका प्रश्न है विग्रह गति में फिर क्या एप्लीकेबल है, तो वहां जिन प्रकृतियों का उदय होता है, अभी जैसे हाँ फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन कौन से, तो गति नाम कर्म का उदय चालू हो गया, विग्रह गति तो गत्यानुपूर्वी का भी है ना। नाम कर्म की बारे में अगर पूछना है तो 20 प्रकृतियों का उदय, 21 गत्यानुपूर्वी को पकड़कर 21 प्रकृतियों का उदय विग्रह गति में होता है। और भी अन्य जो ज्ञानावरण का तो उदय चल रहा है, दर्शनावरण का उदय चल रहा है, अन्य का भी उदय चल, मोहनिया वगैरह वो तो जो यथायोग्य उदय चल ही रहा है।
देखो ये जीव को मिथ्यात्व है ना, अभी संसार ये समझ लो, तो उसको हर समय निरंतर कर्मों का उदय तो चालू है, फिर वो तुम्हारे हमारे जैसे पर्याप्त अवस्था में हो या विग्रह गति में चलता हो।
देखो उसमें अभी फॉर एग्जाम्पल स्थिर अस्थिर का, शुभ अशुभ का उदय हर समय चल रहा है, विग्रह गति में भी होता है, तेजस कारमान, हाँ तेजस शरीर कारमान शरीर उसका उदय चल रहा है, परंतु अभी नारकी में आए ना तो वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय उसके नहीं होगा, अभी नहीं होगा, विग्रह गति में नहीं होगा, वहां पहुंचते ही प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय, वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग का उदय वहां जाकर शुरू होगा। पहले ये सहनन वगैरह, कोई मनुष्य में जन्मता है तो सहनन का उदय भी पहले समय पर्याप्त पूर्ण है, पहले समय में विग्रह गति में नहीं होता, विग्रह गति में उसका नहीं होता है। जैसे विग्रह गति में हमने 21 प्रकृति देखी थी, आपको याद होगा यहाँ नाम कर्म के उदय की अपेक्षा अलग अलग भेद किए थे, जैसे विग्रह गति वाले के 21 प्रकृतियों का उदय होता है, आहार पर्याप्ति सारी पर्याप्तियां शुरू हो गई तो दो पर्याप्ति यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक, फिर अभी उसमें एक इंद्रियों को होगा तो 24 का उदय होगा, अभी अन्य अन्य की अपेक्षा अलग अलग है, अभी उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। मनुष्य तिरियंचों की बात होगी तो 26 का उदय होगा क्योंकि सहनन है, और देवनारकियों की अपेक्षा 25 का उदय है क्योंकि सहनन नहीं है। फिर एक एक पर्याप्ति पूरी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रकृतियों की बढ़ोतरी होती है, जैसे अभी हमने 25 देखे, अभी हम नारकियों की बात कर रहे हैं तो नारकियों की बात करेंगे। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर परघात और उच्छ्वास दो प्रकृतियों का उदय शुरू हो जाता है, सॉरी मैंने गलत बताया, परघात और विहाय गति, परघात और विहाय गति का उदय शुरू होता है, यानी 25 में दो बढ़ गए 27 हो गए। उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर उच्छ्वास का उदय शुरू हो जाता है, 28 हो गए, और भाषा पर्याप्ति शुरू होने पर पूर्ण होने पर दुस्वर, अभी यहाँ दुस्वर को लेना है, नारकीय ना, तो दुस्वर का उदय शुरू हो जाता है, तो 29 का होता है, तो नारकियों के लिए उतना होता है। ये नाम कर्म के उदय स्थान है अलग अलग, विग्रह गति वाला स्थान, फिर मिश्र, मिश्र शरीर काल कहते, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर उच्छ्वास पर्याप्ति काल, और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर मरण तक भाषा पर्याप्ति काल कहने में आता है। आप कहेंगे मन पर्याप्ति भी होती है, परंतु और कोई प्रकृति नहीं रही कि जिसका उदय होना बाकी था, ये नाम कर्म की उदय की अपेक्षा बात हो रही है। अब ये बात यहाँ रह गई, अपर्याप्त काल में इनका उदय नहीं रहता। उदय विशेष इतना है कि प्रत्येक शरीर का बंध उपघात के समान है, हमने पहले ही देखा था ना, जैसे विग्रह गति में उपघात का उदय नहीं है, वैसे ही प्रत्येक शरीर नाम कर्म का भी विग्रह गति में उदय नहीं है। पर्याप्ति शुरू होने के पहले समय से ही उदय शुरू हो जाता है। कौन से संगी असंगी का अलग नहीं है उसमें, परंतु पंचेंद्रिय जाति में भी बहुत सारे भेद हो गए, जैसे स्थावर नाम कर्म एक ही है, फिर भी उसमें भेद करते, उसमें पृथ्वी काय वगैरह अग्नि काय, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें भी ये डिफरेंस कैसे पड़ते हैं, क्योंकि कर्मों में तो नाम तो उतने ही लिए हैं जितने बहुत जरूरी है। ये नाम कर्म के भी 93 भेद हम देखते हैं, परंतु उसके और डिटेल करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे सभी कर्मों के। तो स्थूल तरीके से ये इतने सारे 148 प्रकृतियां कहो, या कॉम्पैक्ट करके 122 120 जो कहते हैं उसकी बात है। अभी शेष दो गुण स्थानों में स्वोदय से ही इनका बंध होता है, क्योंकि शेष दोनों गुण स्थान नारकियों के अपर्याप्त काल में होते नहीं है। शेष दो यानी कौन से दो? हाँ, दूसरा और तीसरा, वो तो पर्याप्त नारकियों के ही होते हैं, और पर्याप्तों में तो ये प्रत्येक शरीर का उदय चल ही रहा है, उपघात का उदय चल ही रहा है, ये सबका, उच्छ्वास का, परघात का, सबका, तो उनके लिए ये स्वोदय से ही बनती है। अब पुरुष वेद, मनुष्य गति, औदारिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ सहनन, मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी, प्रशस्त विहायु गति, सुभग, सुस्वर, आदेय, सुस्वर के बाद कौमा लगाना, यश कीर्ति और उच्च गोत्र, प्रकृतियों का चारों गुणस्थानों में परोदय से ही बंध होता है। हम एक एक को देखेंगे, क्योंकि नारकियों में इनके उदय का विरोध है। इतनी जो लंबी चौड़ी लिस्ट देखी, इनका नारकियों में उदय ही नहीं है, बंध होता है, उदय है ही नहीं। देखो पुरुष वेद, नारकियों को तो नपुंसक वेद का ही उदय है, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय, तो यहाँ तो इनके नरक गति का उदय चल रहा है। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग की बात करेंगे तो इनको तो वैकिरिक शरीर, वैकिरिक अंगोपांग का उदय है। समचतुरस्र संस्थान, और नारकियों को कौन से संस्थान का उदय है? कुंडल संस्थान का, ये अंगोपांग देखा हमने। वज्रषभ सहनन, नारकियों को कौन सा सहनन है? प्रेम सहनन ही नहीं है। हाँ, देव और नारकियों में ये सहनन नहीं पाया जाता है, ये हड्डी मांस चर्म बाल केश वगैरह जो है ना, सप्त धातु, ये वैक्रियक शरीर में नहीं होते, सप्त धातु से रहित होता है। और हमारी सारी ब्यूटी कहाँ है? बालों में रही है। ये पंचकल्याण का के फोटो होते हैं ना कभी पहले वाले, तो मूछ वाले होंगे वो मनुष्य दिखाएंगे, और बिना मूछ के देव दिखाएंगे, बाकी तो मुकुट होता है, उनको बाल है कि नहीं क्या पता अपने को। मैंने मेरे किसी पुस्तक में लिखा है बाल के बारे में। इन्हें वो लड़कियों को टोकने के लिए ऐसा लिखा है उसमें, कि उसमें लिखा है कि देवों के बाल भी नहीं होते और बच्चे भी नहीं होते हैं। वो वहाँ तो युवा जन्मते हैं, नहीं बच्चे, बच्चों की कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर कहते हो कि हाँ इसीलिए वहाँ स्वर्ग सुख कहा है कि बच्चे नहीं है। और हमारा तो सारा समय या तो बाल संवारने में या बच्चे संभालने में जाता है। नहीं, हाँ हाँ आपने अच्छा किया पूछा। ये हमने बहुत बार सुना है ना, मोक्ष जाने वाले और सातवीं नरक जाने जाने वाले। क्या कहा? जाने वाले। जाने वाले कौन होते? मनुष्य और तिरियंच। तिरियंचों में भी वो मछलियां ले ना, बड़े बड़े मच्छ होते हैं वो, जिनके वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, ऐसे जीवों के वो सातवें नरक में जा सकते। वो अन्य हीन सहनन वाले सातवें में नहीं जाएंगे, ऊपर के नरकों में जा सकते हैं। जाने वाले की बात है, परंतु वहां जाने के बाद वहां कोई सहनन नहीं होता। सहनन नाम कर्म तो वहां बंधेगा, क्योंकि वो तो औदारिक शरीर बांध रहे हैं नाम कर्म। तो तिरियंच और मनुष्यों में जन्मेंगे तो कोई ना कोई सहनन तो उनके होगा ही, हीन हो या उत्कृष्ट हो, जो कुछ है। तो यहाँ क्या लिखे है, वज्रषभ सहनन जब बांध रहे हैं तो उसका उदय तो है ही नहीं सहनन का, और बंध चल रहा है तो कहेंगे परोदय से ही बंद होता है। मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी, ये तो बात हमने पढ़ी। प्रशस्त विहाय गति, नारकियों के अप्रशस्त विहाय गति का ही उदय रहता है हर समय, पहले से लेकर चौथे तक, क्योंकि उनके सारे अशुभ प्रकृतियों के उदय चल रहे हैं। फिर भी बनती है प्रशस्त विहाय गति तो हम क्या कहेंगे, ये परोदय से ही बन रही है। सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति उच्च गोत्र, इनके बारे में ऐसा ही है। नारकियों को तो हर समय दुर्भग का उदय है, दुस्वर का है, अनादेय का है, अयश कीर्ति का है, और निज गोत्र का उदय चल रहा है। और जब ये प्रकृतियां बंधेगी तो हम क्या कहेंगे, ये परोदय में बंध रही है। तो चारों गुणस्थानों में बताना था ना, चौथे वाले को ये प्रशस्त बनती है क्योंकि वो दुर्भग अनादेय वगैरह का दूसरे में विचित्ति होती है, इसलिए इनका बंध है वहां पर भी। शुभ प्रकृतियां नारकियों को नहीं बनती ये बात नहीं है। तो शुभ प्रकृतियां किस कारण बंधेगी, पाप करने से के पुण्य करने से? हाँ तो वहां भी होता है ना। पाप करने से नरक में गया है, परंतु वहां पाप का फल भोगते भोगते हो सकता है शुभ परिणाम हो और ये प्रकृतियां बंधे। जैसे निगोद में भी बन सकती है, तभी तो कोई उत्कृष्ट सहनन वाला मनुष्य होकर उसी भव में मोक्ष जा सकता है। तो वहां कैसा पुण्य करता होगा, हम तो पुण्य सोच सोच कर करते ऐसा लगता है ना हमको। वहां तो सोचने के लिए मन भी नहीं है, फिर भी ये सहज रूप से, वो चारित्र गुण है, राग द्वेष रूप परिणति चल रही है, तो शुभ या अशुभ रूप वहां भी परिणाम होते है।
इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, कोई भी जीव होगा तो उसका या तो शुभ उपयोग होगा, अशुभ उपयोग होगा, या शुद्ध उपयोग होगा। एक पर्टिकुलर अंतर्मुहूर्त के अधिक वो उसमें रह नहीं सकता है। देखो देखो, अशुभ में होगा तो बदल कर शुभ में जाएगा, शुभ में से अशुभ, अशुभ में से, ये हर गति में ऐसा होगा। और जो शुद्ध उपयोग में भी जाएगा, एक अंतर्मुहूर्त तक रहेगा, केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, उसको फिर शुद्ध उपयोग में जाने की गरज नहीं, वो उसका काम हो गया अभी। ऐसा नियम ही है।
हाँ, नारकी देवगति का बंध ही नहीं कर सकते। हाँ, तो देव भी नरगति का बंध होता ही नहीं उनके, वैसे उनके परिणाम भी नहीं होते। हाँ, ऐसा नहीं होता नरगति के योग्य। हाँ, एक इंद्रिय जैसा हो सकता है। देखो ऐसे तो करना नहीं, कैसे नियम है जो अकाट्य नियम कहते हैं उसको। और अहेतुवाद आगम, क्यों ऐसा वहां नहीं, जो होता है उसको भगवान ने भी बताया है कहां क्या होता है, और फिर उसके नियम भी बताए। और किसी की मनगढ़ंत कल्पना नहीं, इसमें कितनी कितनी बार का यह है ना, कौन कैसे बंद कर सकता है, वो सारी लिस्ट है ना उसकी। बंधने, कौन से बंधने वाली प्रकृतियां हो सकती है, मनुष्यों में कितनी हो सकती है, देवों में कितनी हो सकती है, नारकियों में कितनी है, वो भी नीचे के देवों में कितनी हो सकती है, ऊपर के देवों में कितने, नारकियों में भी पहले नरक से सातवें नरक तक की लिस्ट अलग अलग बताएंगे। तो जितने हम डिटेल में पढ़ते तो उतने ख्याल आता है अरे कैसा ये सारा स्वरूप वस्तु का, और उनके वैसे वहां के परिणाम ऐसे ही हो गए, तो वो नहीं करेगा तो ये सवाल ही नहीं आता। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब ये निरंतर है कि शांतर है उसकी चर्चा चल रही है। पांच ज्ञानावरणीय ये ध्रुव प्रकृति है तो निरंतर बंधेगी ना। छह दर्शनावरणीय, अभी छह क्यों लिया, क्योंकि चौथे तक बंधने वाले लिए, इसलिए पहले दूसरे के लिए हम नौ के नौ निरंतर बंदी कहेंगे। अभी हमने जो ग्रुप पहले पढ़ा है उसी की बात चल रही है, इसलिए यहाँ छह को ही लिया, नहीं तो हमें ऐसा प्रश्न हो सकता है अरे नारकी इन तीनों को बनते नहीं, बांधते नहीं क्या, वैसी बात नहीं है। वो ध्रुव बंदी है, जहां तक विच्छित्ति होती है वहां तक नौ के नौ बंधेगी, दूसरे में विच्छित्ति होगी तीन की तो फिर तीसरे और चौथे वाले को छः छः बंधेगी, इसलिए छः को निरंतर बंदी कहा। यहाँ छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, कौमा लगाना, ये बारह इन्हें अनंतानुबंधी को बाद में पहले दूसरे में बताएंगे। भय जुगुप्सा, ये भी ध्रुवबंदी प्रकृति है, हर एक को बनती है। पंचेंद्रिय जाति, नारकी हर समय पंचेंद्रिय जाति का ही बंद कर रहा है, ये है तो प्रतिपक्षी परंतु नारकियों के लिए नहीं। मनुष्य तिरेंचो में हम देखते हैं पांच जाति में से कोई एक जाति, वहां तो हमने पहले दूसरे गुण स्थान में पहले गुण स्थान में तो पांचों में से कोई एक बंधेगी, ये बात हमने देखी थी पहले। औदारिक तेजस्व कारमान शरीर, कौमा, हाँ जाति की बात कौमा दिया। देखो अभी जो तेजस और कारमान शरीर का बंध तो सब सब जीवों के लिए ध्रुव बंध है, निरंतर बंधी है वो। अब औदारिक शरीर, नारकी तिर्यंच हो या मनुष्य में जावे, हर समय औदारिक शरीर नाम कर्म का ही बंध कर रहे हैं, इसलिए नारकियों के लिए औदारिक शरीर नाम कर्म का बंध है, उसको हम कहेंगे निरंतर बंदी है उनके लिए। औदारिक शरीर अंगोपांग भी औदारिक शरीर के साथ बनता ही है, क्योंकि अंगोपांग है ना। देखिए जो कोई एकेंद्रिय संबंधी बंध करता है तो उसके अंगोपांग का बंध नहीं होगा, सहनन का बंध नहीं होगा, परंतु द्विंद्रिय से लेकर ऊपर सहनन भी होता है और अंगोपांग भी होता है। नारकी तो पंचेंद्रिय का ही बंद कर रहे हैं तो उनके अंगोपांग का भी बंध उसके साथ होगा। पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, फिर औदारिक शरीर अंगोपांग, ये उसके साथ लगती हुई पूरक जो प्रकृतियां है वो वैसे ही एक साथ उसका बंध होता है। हाँ पैकेज, पैकेज है उसका। वर्ण गंध रस स्पर्श, ये तो ध्रुवबंदी ही है, वो तो बनती रहती सबको। अगुरु लघु उपघात, कौमा लगाना, परघात उच्छ्वास, ये अगुरु लघु और उपघात तो ध्रुवबंदी है, परंतु परघात उच्छ्वास जो है नारकी जो तो पर्याप्तों का ही बंद कर रहे हैं हर समय, बादर पर्याप्तों का, क्योंकि कोई वहां से नरक में से मरकर अपर्याप्तों में जन्म ले वे ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए बादर के साथ वो परघात और उच्छ्वास भी हर समय बन रही है बंधने के लिए। त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, निर्माण और पांच अंतराय, इनका निरंतर बंध है। ये निरंतर क्यों कहा इसके ख्याल है ना, कोई तो प्रकृतियां ध्रुव बंधी है तो उसका निरंतर बंध होता ही होता है, क्योंकि जब तक विच्छित्ति नहीं हो हर समय बनती है, परंतु यहाँ जो कोई ऑप्शनल है, त्रस है, बादर है, पर्याप्त आदि, नारकियों के लिए वो निरंतर है, क्योंकि नारकियों में उनके प्रतिपक्ष का बंध होता ही नहीं है। ये कुछ ख्याल में आता है ना, यदि कोई मनुष्य तिर्यंच होवे तो वो पर्याप्त का भी बंध कर सकता है, अपर्याप्त का भी हो सकता है, उसके मिथ्या तो गुणस्थान में पर्याप्त नाम कर्म भी बांधेगा या अपर्याप्त भी बन सकते, तो अपर्याप्त के साथ उसको ये उच्छ्वास का नहीं बंद होगा, परघात का बंद नहीं होगा। हाँ उपघात का होगा, वो तो निरंतर ध्रुवबंदी है। अब आगे बढ़े, क्योंकि ये प्रकृतियां नरक गति में निरंतर बनती है। अब ये सांतर बंदी कौन सी है उसको बताएंगे। साता व असाता वेदनीय। सांतर बंदी का अर्थ क्या है? जो प्रतिपक्ष प्रकृतियां होती है, कभी इसका बंध है तो कभी इसका बंध है। पहले हमने उदय की अपेक्षा बताई, स्वोदय परोदय की अलग बात, वहां तो उदय को देख रहे थे। सांतर निरंतर बंदी में सांतर बंध किसकी अपेक्षा कहते हैं? उसका जो अपोजिट, जो प्रतिपक्ष है, उसका बंध होता है। कभी साता का बंध होता है, कभी असाता का बंध, बंध की बात चल रही है, तो उसको कहेंगे सांतर बंदी है। देखो, साता असाता वेदनीय, हास्य रति अरति शोक, ये युगल हमेशा, ये हास्य और शो रति अरति ऐसा नहीं होगा कभी, जोड़िए हास्य रति या शोक रति या अरति शोक। फिर स्थिर अस्थिर, बनते समय एक एक बंधेगी, इसलिए वो प्रतिपक्षी है, उदय दोनों का साथ चलेगा हर समय, तेरवे तक। शुभ अशुभ का भी ऐसा ही है। यश कीर्ति और अयश कीर्ति प्रकृतियों का सांतर बंध है, क्योंकि ये प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं। क्योंकि सर्वगुण स्थानों में इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। चौथे तक की बात है ना, सर्वगुण स्थानों का अर्थ क्या है? नारकियों की बात चल रही है, तो चारों ही गुण स्थानों में पुरुष वेद, मनुष्य गति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रषभ सेनन, प्रशस्त विहाय गति, सुभग, सुस्वर, आदेय, मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी और उच्च गोत्र, इनका मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में सांतर बंध है। यानी इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियां जो है वो पहले दूसरे गुणस्थान में हो सकती है। जैसे पहले और दूसरे गुणस्थान वाला पुरुष, पहले गुणस्थान वाला देखेंगे हम, या पुरुष वेद बंधेगा या स्त्री वेद या नपुसक वेद, बंध की बात चल रही। दूसरे गुणस्थान में स्त्री वेद या पुरुष वेद। अब मनुष्य गति की बात, पहले और दूसरे गुणस्थान वाले मनुष्य गति भी बांध सकते या तिर्यंश गति भी बांध सकते, संस्थानों में भी कोई एक संस्थान बांधेंगे। सहनन में भी प्रशस्त या अप्रशस्त, क्योंकि उनकी बंधे की विच्छेदी जिसके दूसरे में होती है तो उनका बंध पहले और दूसरे में ऑप्शन है ना, प्रतिपक्ष सहित है। सुभग सुस्वर आदे, इसका भी बंध दुर्भग दुस्वर अनादेय का भी पहले दूसरे में हो सकता है। मनुष्य गति की बात हमने देखी, प्रायज्ञान पूर्वी में भी वही देखना, उच्च गोत्र या नीच गोत्र, पहले को भी बंधेगा और दूसरे को भी बंधेगा, तो इनके सांतर कहेंगे। क्योंकि यहां, यहां का अर्थ है मिथ्या दृष्टि और सासाधन में इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। विशेषता इतनी है कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रखने वाले मिथ्या दृष्टि जीव, तो सत्ता रखने वाले मिथ्या दृष्टि जीव कहां, कौन से नरक तक हो गए? तीसरे, मिथ्या दृष्टि कहा ना, सत्ता रखने वाले और मिथ्या दृष्टि तीसरे तक हो सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे, क्योंकि मिथ्या तो में जाकर नरक में गए हैं वो, सम्यक दृष्टि मनुष्य थे तभी तो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे थे, परंतु सम्यक तो के पहले नरकायु बांधी थी और क्षायिक नहीं हुए है। क्षायिक हो तो कोई सम्यक तो के साथ ही चला जाए, उसका तो कोई गिरने का सवाल नहीं है, परंतु वेदक सम्यक दृष्टि है और मरते समय मिथ्यात्व में चला जाएगा और मिथ्यात्व में ही नरक में जन्म होगा, जन्मने वहां पर्याप्ति चालू हो जाएगी और दूसरी पर्याप्ति तक वो मिथ्या दृष्टि है, बाद में सम्यक तो भी प्राप्त कर लेगा, तो उस अवस्था की बात चल रही है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि, उसमें मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी का निरंतर भी बंध पाया जाता है। प्राय हुए, प्रायो हुए, प्रायोग्य, यह निकाल दिया। यानी वे जो जीव है वो मिथ्यात्व अवस्था में भी मनुष्य गति का ही बंध कर रहे हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में उक्त प्रकृतियों का निरंतर बंध है, क्योंकि यहाँ इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध नहीं होता, क्योंकि उनके बंध की उच्चिति दूसरे में होती है, जैसे दुर्भग है, अनादेय है, यशस कीर्ति वगैरह वगैरह। हाँ, नारकी मिथ्या दृष्टि जीव 6 संस्थानों को बांध सकता है। फिर हुंडक संस्थान की बंध की विच्छित्ति पहले में होती है, यानी दूसरे वाला नारकी उसको नहीं बांधेगा। दूसरे गुणस्थान में बीच वाले 4 संस्थानों की बंध विच्छित्ति होती है, यानी दूसरे गुणस्थान का नारकी वो 4 और पहला 5 संस्थानों में से किसी का बंध करेगा। तीसरे और चौथे गुणस्थान वाला एकमात्र समर चतुरस्र संस्थान को बांधेगा, क्योंकि बीच वाले की विच्छित्ति होती गई ना, नीचे से अशुभ सारे संस्थान है उनके बंध की विच्छित्ति हुई, पहले में 6 की हुई और दूसरे में बीच वाले 4 की हुई, तो अभी बंध एकमात्र समर चतुरस्र संस्थान का रह गया, तीसरे चौथे गुणस्थान की। पहले गुणस्थान वाला भी शुभ भाव तो करता है ना, शुभ भाव, विशिष्ट शुभ भाव के कारण वो उनके बंधने में कोई उसको रुकावट नहीं है। अभी हमने देखा ना, वज्र ऋषभ नारा सहनन को भी बांधता है, उसको भी बांध सकता है। नहीं बांधेगा तो फिर नरक में से निकलकर फिर दोबारा नरक में जाते हैं ना कितने, अभी 7वें नरक में से निकला, हिंस्र पशु हुआ कोई, और फिर दोबारा वो 7वें नरक में चला गया। मेरे ख्याल से बीच में एक वो होता है ना, उसका सिंह में जन्मता है और मत्स्य होता है, ये 2 भव हो जाते बीच में, परंतु लगातार 2 बार जाता है ऐसा कहा है उसमें। तीर्थंकरों के तो होगा ही, क्योंकि वो तो मिथ्या तो अवस्था में भी मनुष्य गति ही बांध रहे हैं, समय चतुर्थ वो तो सारे शुभ प्रकृतियां ही बांधेंगे, क्योंकि वो मिथ्या तो अवस्था भी उसकी बहुत छोटे काल तक है, शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही वो फिर वेदक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। देखो आपका प्रश्न है, जो हुंडक संस्थान भी बांधता है और नेक्स्ट भव में मोक्ष जाने वाला है, ऐसे बहुत कम होंगे। तो देखिए, वो तो मनुष्य गति बांधेगा, तो मनुष्य गति के साथ वज्र ऋषभ नारा सहन बांधने का, जो नेक्स्ट भव में मोक्ष जाने वाला है, तो ये जरूरी नहीं कि उसको बाकी प्रकृतियों के साथ ये भी अप्रशस्त ही बांधना है। यदि चरम शरीरी है तो वज्र ऋषभ नारा सहन को बांधेगा, हुंडक संस्थान की, ऐसा मैंने सुना ये। संस्थान कोई भी हो सकता है 6 में से, मोक्ष जाने के लिए किसी भी संस्थान की कोई रुका उसका नियम नहीं है, जैसे सहनन का नियम है वैसे, क्योंकि हमने देखा थे 13वें गुणस्थान में 6 संस्थान के उदय की विच्छित्ति होती है, यानी उदय वहाँ हो सकता है उसकी विच्छित्ति होती है। जो तीर्थंकर है उसके तो समय चतुरस्र संस्थान ही होगा, उनके तो बहुत सारी शुभ प्रकृतियों का ही उदय होता है ना, क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है उसके साथ अन्य भी ऐसे ही शुभ प्रकृति वो उच्च प्रकार की बांधेगा, तो उनके तो सुस्वर नाम कर्म ही बांधेगा उसके साथ, उसका ही उदय होगा। ऐसा नहीं होगा ना, एक तो इतनी उच्च प्रकृति बांध रहा है और दूसरी नीच कुछ कहीं तो बांधे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तीर्थंकरों की अपेक्षा वो हिंडोक संस्थान को नहीं बांधे, सामान्य अन्य केवली होने वाला है तो बांध सकता है।
इनका ऐसा कहना है कि जैसे हमने देखा अपकर्षण काल में 8 आयु बांध कर जाने वाले जीव कम है, और एक समय में बांध कर जाने वाले जीव अधिक है, एक बार
हाँ।
वैसे हुंडक संस्थान वाले जीव मोक्ष जाने वाले कम होंगे और बाकी के अधिक होंगे, ऐसा उनका
ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, ये संस्थान में तो कुछ घटित ही नहीं होता है ना, अभी हो सकता है कि अभी कोई सम्यक दृष्टि मरकर आवे यहाँ, तो सम्यक दृष्टि वो बांध करेगा बंद करेगा तो समय चतुर्थ संस्थान का ही बंद करेगा, क्योंकि उसी भाव में समय को भी प्राप्त किया और मोक्ष भी चले गए, ऐसे तो कम हो गए ना। बहुत सारे तो कितने कुछ भाव कर करके आएंगे बहुत सारे जीव, क्योंकि असंख्यात सम्यक दृष्टि है, नारकी असंख्यात सम्यक दृष्टि है, देव असंख्यात सम्यक दृष्टि और तिर्यंज असंख्यात सम्यक दृष्टि। अभी सम्यक्त्व के साथ तो अच्छा सहनन, अच्छा संस्थान, ये सारे जो कुछ यथायोग्य बांधेंगे, पहले से जो बांध कर आए हैं मनुष्य में, वो हो सकता है उसमें सम्यक को प्राप्त करके मोक्ष चले जाए, उसकी कोई ना नहीं, ये बात कहना चाहते हैं। ये शरीर में हमारी आत्मबुद्धि है तो हमें वो संस्थान कैसा है ऐसा है उसमें जरा ज्यादा अपना दिमाग चलता है ना। हाँ 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 उसके ऐसी कोई उसकी संख्या की बात नहीं है, केवली तो उसको भी जानेंगे। देखो अभी हम यहाँ बढ़ते हैं, अभी हमने देखा नहीं इन प्रकृतियों का, ये 96 पेज पर दूसरी लाइन, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में उक्त प्रकृतियों का निरंतर बंध है, क्योंकि यहाँ इन प्रतिपक्ष इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध नहीं होता। ये हमने कौन कौन सी देखी थी, वो सुभग वगैरह जो है ना, सुभग है, सुस्वर है, आदेय, उनके प्रतिपक्षी कौन से, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, उनका बंध तीसरे चौथे वाले को होता नहीं है, इसलिए उसको हम कहेंगे एकमात्र वो शुभ प्रकृतियां ही बनती है उनके, तो निरंतर बनती है ऐसा कहेंगे। अब उनके बांधने वाले प्रत्यय बता रहे, इन प्रकृतियों को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि नारकी जीव के मूल प्रत्यय चारों होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। नाना समय संबंधी उत्तर प्रत्यय 51 होते हैं। देखो हमने चार गति की अपेक्षा बात की थी तो कितने प्रत्यय देखे थे याद है, 55, क्योंकि आहारक द्विक को छोड़ दिया था हमने, आहारक और आहारक मिश्रक योग को छोड़कर बाकी देखे थे। अब नारकियों में कितने हो गए, अवदारिक योग होगा कि नहीं होगा, नारकियों का अवदारिक का योग होगा कि नहीं होगा, नहीं है, और अवदारिक मिश्र भी नहीं होगा, ख्याल है ना। तो यहाँ क्या कहते देखो, नारकी नाना समय संबंधी उत्तर प्रत्यय 51 होते, यानी योग में से हमें और दो घटाए, 53 रह गए ना, और कुछ कम होता होगा कषाय में से। वेद अभी एक नपुसक वेद का ही उदय है, तो स्त्री वेद और पुरुष वेद, बंद की बात नहीं हो रही है, प्रत्यय ने उदय की बात हो रही है। तो देखो 51 क्यों है, क्योंकि उसके औदारिक औदारिक मिश्र ये योग हो गए दो, और श्रीवेद और पुरुष वेद इन चार प्रत्ययों का अभाव है। हमने 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग में से कितने होते उसकी बात चल रही है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ हमने उसमें से 4 हो गए, और 3 वेद में से 1 वेद हम गिनते थे, एक जीव की एक समय, एक समय की अपेक्षा, परंतु यह हम नाना समयों की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य तिर्यंचों में तो तीनों वेद में से कोई वेद होता है, तो तीनों वेद को हम गिनते हैं एट अ टाइम। तो यहाँ तो नारकियों में तो अन्य दो वेद होते ही नहीं है, एकमात्र नपुसक वेद ही होता है, इसलिए कषाय 25 के बदले में यहाँ 23 लेना। और योग में भी हमने आहारक द्विक पहले ही निकाला था, अब औदारिक द्विक को भी निकालना, इसलिए ये 4 और ये 2, 6 कम करना, इसलिए 51 हो गए। ये 57 टोटल होते हैं, उसमें से 6 कम किए। और सामान्य से मिथ्या दृष्टि को 55 कहते थे, उसमें से 4 कम करने। और एक समय संबंधी जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्यय क्रम से 10 और 18 होते, ये भी हमने बहुत बार देखा था, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 18। सासाधन सम्यक दृष्टि के मूल प्रत्यय तीन होते हैं, क्योंकि उसके मिथ्यात्व का अभाव है। नाना समय संबंधी उत्तर प्रत्यय 44 होते हैं, क्योंकि उसके अभी देखो, अभी हम थोड़ा गिनेंगे यहाँ। मिथ्या दृष्टि के कितने देखे थे? 5 तो मिथ्यात्व, 12 अविरति, कषाय 23 देखे थे, और योग में 4 योग निकाले थे, हाँ तो 11 लिए थे। इसकी टोटल कितनी हुई थी? हमने टोटल देखी थी 23 और 11, 24, 10, 34, 34 और 36, 10, 6, 40 और 5, 51 हुई थी, 51। अभी दूसरे गुणस्थान में कितने हो गए? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व गया, अच्छा अविरति है, कषाय में उतने लेने का नहीं लेने, 23 ले सकते ना। अनंतानुबंधी तो यहाँ भी है, वेद एक है, यानी अनंतानुबंधी के 4 हो गए, वेद एक में से एक है, फिर वो युगल वगैरह वो सब ले लेना। अनंतानुबंधी आदि यानी 16 तो वो हो जाएगी, एक वेद 17, एक युगल, हाँ एक युगल ये एक युगल वो, इस हमको टोटल गिननी है, तो यहाँ भी 23 हो गए। अब यहाँ की कितने उन्होंने बताया? 44 बताए ना, तो इसकी टोटल कितनी हुई? 23 दो 25 दो 35 तो हो गए, और ये 9 चाहिए 11 के बदले। कौन से दो मिश्र निकालना? वैकृत मिश्र निकालना, और औदारिक मिश्र हमने पहले ही निकाला है, और क्यों निकालना? वैकृत मिश्र क्यों निकालना? पहले में रखा और दूसरे में मरण है, दूसरे में मरण का सवाल ही नहीं आता। मरण के समय तो वैकृत का योग है, हाँ सासाधन के साथ मरकर नरक में नहीं आता, तो विग्रह गति को भी निकालना पड़ेगा, कारमान का योग को सासाधन वाले में। दूसरे गुणस्थान के लिए सासाधन है तो नरक में सासाधन हो सकता है, परंतु कहीं से मरकर नरक में सासाधन के साथ नहीं आ सकता, इसलिए सासाधन के साथ नरक नारकी जीव को कारमान का योग नहीं होगा और वैकृत मिश्र भी नहीं होगा। ऐसा डिराइव करेंगे हम क्यों ऐसा सवाल, क्योंकि यहाँ तो क्यों का जवाब नहीं दिया है। देखो हम पढ़ेंगे अभी इसको, नाना समय संबंधी की बात है, ऊपर से 5वीं लाइन। नाना समय संबंधी उत्तर प्रत्यय 44 होते हैं, क्योंकि उसके औदारिक औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र, कार्मण, स्त्रीवेद और पुरुषवेद, इन 6 प्रत्ययों का अभाव है। ये 4 प्रत्ययों का तो हमने पहले गुणस्थान वाले को भी अभाव किया था, औदारिक औदारिक मिश्र, स्त्रीवेद और पुरुषवेद। इन एडिशन दूसरे गुणस्थान वाले को अभी क्या नहीं और होगा? कारमान का योग नहीं होगा और वैकृत मिश्र नहीं होगा, क्योंकि मरकर नरक में नहीं आते, सासाधन के साथ मरकर कोई नरक में नहीं आता, तो नरक में आने वाले को विग्रह गति में सासाधन गुणस्थान नहीं पाया जाएगा और मिश्र अवस्था में भी नहीं होगा। बाद में जीव सम्यक दृष्टि होकर सासाधन में चले गया, चले जाएगा, उसकी बात नहीं हो रही है। ऐसे तो असंख्यात सासाधन गुणस्थान वर्ती नारकी जीव है, होते हैं हमेशा। हाँ अब एक समय संबंधी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रम से 10 और 17 होते, ये तो हमने सामान्य से भी देखा था। सम्यक मिथ्या दृष्टि के मूल प्रत्यय 3 होते हैं, क्योंकि उसके मिथ्यात्व का अभाव है। अब इन एडिशन अनंतानुबंधी भी चली जाएगी। नाना समय संबंधी उत्तर प्रत्यय 40 होते हैं, क्योंकि ओघ प्रत्ययों में से, ओघ प्रत्यय ने गुणस्थान में जो हमने तीसरे गुणस्थान के लिए सामान्य से बात की थी, सामान्य से कितने देखते हमेशा? तीसरे गुणस्थान में हमने 43 देखते थे, है ना, और चौथे में 40 देखे थे, तो उसमें से इसको कौन सा नहीं होगा? औदारिक, स्त्रीवेद और पुरुषवेद प्रत्यय नहीं होते। क्या औदारिक मिश्र हो सकता है? तो उसको तो पहले से ही हमने निकाला था। जब सामान्य से बात की थी तीसरे गुणस्थान की, तो उसमें से भी कोई भी मिश्र नहीं लिया था और कारमान भी नहीं लिया था, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरकर कोई अन्य में जावे ऐसी बात नहीं बन सकती। इन एडिशन क्या निकालना है, तो नारकियों की बात हो रही है तो उसमें औदारिक उनके होगा नहीं, स्त्रीवेद नहीं होगा। पुरुषवेद नहीं होगा, यानी हमेशा जो जनरली हम 43 देखते हैं उसमें से ये तीन कम हो गए तो 40 हो गए। या अभी हमने यहाँ जो गिने थे ना, हमने पहले में और दूसरे में गिने थे, देखो पहले में हमने 51 गिने थे और दूसरे में 44 देखे थे। हाँ, अब इन 44 दूसरे में देखे थे, वो तीसरे में कितने हो जाएंगे, उसमें कौन से नहीं हो गए 44। हाँ, अनंतानुबंधी के 4 गए तो 44 से 40 हो गए, क्योंकि वो मिश्रों को तो यहाँ भी निकाला था दूसरे में, क्योंकि वो मरकर वहाँ नरक में नहीं आते। इसमें अब एक समय संबंधी बात करते हैं। एक समय संबंधी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रम से 9 और 16 होते हैं। ये तो बात हमने पहले भी, जो सामान्य से होती है तो उसमें भी लागू हो जाती है। एक समय में उसमें चेंज नहीं होगा, नाना समयों में क्यों, क्योंकि वहां तो हमको 3 वेद लेने पड़ते हैं। अब यहाँ एक ही वेद लेना है, वहां 3 वेद में से एक होता था, यहाँ एक ही है तो वही का वही होगा, तो उसकी संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। असंयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का अभाव होने से मूल प्रत्यय 3 है। नाना समय संबंधी उत्तर प्रत्यय 42 होते हैं। हम हमेशा ओघ में हमने 46 देखे थे, वैसे अभी जो ये वेद नहीं है और वो औदारिक नहीं है उसको निकालना है, क्योंकि ओघ प्रत्ययों में से औदारिक, औदारिक मिश्र, स्त्रीवेद और पुरुषवेद, इन 4 प्रत्ययों का अभाव है। सम्यक दृष्टि जीव विग्रह गति में भी होता है और मिश्र अवस्था में भी, बराबर है ना? परंतु जब चारों गति की इकट्ठी बात की थी हमने, तो वहां जहां एप्लीकेबल होगा उसको सबको लेते थे, इसलिए औदारिक भी रखा, औदारिक मिश्र भी रखा, स्त्रीवेद पुरुषवेद सब रखा था। अब यहाँ नारकियों की स्पेशल बात हो रही है, क्योंकि आदेश की बात चल रही है, यानी मार्गणा की बात चल रही है, तो इसलिए उसमें से औदारिक का योग ये नारकियों को नहीं होगा, चौथे गुणस्थान वाले को, किसी को भी नहीं होता ना, तो चौथे वाले तो उसको भी निकालना है, औदारिक मिश्र को भी निकालना है, स्त्रीवेद पुरुषवेद को भी निकालना, वो तो हम पहले से ही निकालते आए थे। तो हमने जो तीसरे की बात की थी 40, उसमें 2 कौन बढ़ा है चौथे वाले के लिए, हाँ वैकृत मिश्र और कारमान। हम दूसरी अपेक्षा से टेबल बना रहे ना यहाँ पर, तो वो 2 बढ़ जाएगी जो तीसरे में हमने नहीं गिने थे, तो 40 के 42 हो जाएगी। और पांचवे गुणस्थान में हाँ वहाँ होता ही नहीं, बहुत अच्छा। तो एक समय संबंधी जघन्य उत्कृष्ट प्रत्यय यथाक्रम से 9 और 16 होते हैं। अब ये तो प्रत्ययों की बात हो गई, कौन से गति संयुक्त बांधते हैं उसकी अभी चर्चा करेंगे। नारकी बांध रहा है तो देव गति बांधेगा कि नहीं नारकी, और ना ही नरक गति बांधेगा, ऑप्शन रहे 2 की। अब ये हमने ये चौथे गुणस्थान में विचित्ति होने वाली बातें देखी थी, तो 5 ज्ञानावरण 6 दर्शनावरण, इसमें हमने मनुष्य गति को ही लिया था ना पहले में, पहले उसमें भी कौन कौन से गति के साथ इसका बंध होता है उसकी अभी अपेक्षा वो डिवीजन करके बताएंगे। इतने में कितनी प्रकृतियां तिर्यंच गति के साथ भी बंधेगी, मनुष्य गति के साथ भी बंधेगी, उसको बताएंगे। 5 ज्ञानावरण 6 दर्शनावरण, 7 व असाता वेदनीय, 12 कषाय, पुरुष वेद, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक तेजस्व कारमान शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहायुगति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति अयश कीर्ति निर्माण और पांच अंतराय। इन प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि एवं सासाधन सम्य दृष्टि दो गतियों से संयुक्त बांधते हैं, यानी ये सारी प्रकृतियों की लिस्ट है। मनुष्य गति संयुक्त भी जीव बांध सकता है या तिर्यंच गति संयुक्त भी, कहाँ पहले या दूसरे नरक का गुणस्थान का नारकी गुणस्थान की बात है। तो मनुष्य और तिर्यंच में क्या डिफरेंस रहा? हाँ अश्विन भाई, ये मनुष्य गति के साथ भी इतनी सारी बांध सकता है और ये सारी प्रशस्त प्रकृतियाँ ली ना, और तिर्यंच गति के संयुक्त भी बनता है, तो क्या डिफरेंस रहा? उन्होंने तिर्यंच गति उनके है और यहाँ मनुष्य गति है, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ हाँ हाँ, यानी तिर्यंचों के समान हो गए। तिर्यंचों को भी इनका उदय हो सकता है, मनुष्यों को भी इनका उदय हो सकता है। तिर्यंच गति के साथ भी बंद होता है तो उनके उदय में इतनी सारी हो गई, बंद किया तो उदय भी उसके साथ होगा, और मनुष्यों को भी इतना का उदय है। तो केवल मनुष्य गति नाम कर्म के उदय में डिफरेंस रहा, क्या हुआ? मैंने प्रश्न ऐसा पूछा, तिर्यंच गति के साथ भी ये सारी इतनी शुभ प्रकृतियां बन रही है, और मनुष्य गति बांधने वाले को भी ये सारी प्रकृतियां बन रही है, नहीं नरक में से कौन जाएगा भोगभूमि में? कर्म भूमि में आता है, यानी जितनी हमारे प्रकृतियों का उदय है उतनी तो तिर्यंचों को भी होता है। एक गति का भी डिफरेंस रहा ना, क्योंकि हम अपने को बहुत बड़े मानते हैं ना। हाँ ऑफकोर्स, उनके तो उसके साथ उच्च गोत्र का बंध नहीं होगा, इतनी बात होगी, उनके नीच गोत्र का बंध होगा तिर्यंच गति के साथ। अब कहते हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं। ये है करना बराबर, क्योंकि उनके शेष गतियों का बंध नहीं होता। तीसरे और चौथे गुणस्थान वाले जो नारकी है वो तो मनुष्य गति को ही बांधेंगे। मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी और उच्च गोत्र को सभी नारकी मनुष्य गति से संयुक्त ही बांधते हैं। पहले मैंने बताया ना, तिर्यंच गति के वाले को तो उसके साथ हमेशा नीच गोत्र का बंध होता है, क्योंकि उनके शेष गतियों के साथ इनके बांधने का विरोध है। अब बांधने वाले जीव कौन है? तो नारकियों की बात है तो नारकी है ना। इन सभी प्रकृतियों के बंध के नारकी जीव ही स्वामी हैं। बंधाध्वान सुगम है, कहां से कहां तक तो इनकी जो लिस्ट बनाई थी उनके लिए पहले से चौथे तक। इन प्रकृतियों का नारकियों के गुणस्थानों के चरम व अचरम स्थानों में बंध विच्छेद नहीं है। इतनी ये जो प्रकृतियां देखी इनके बंध की विच्छेद तो है ही नहीं, क्योंकि ऊपर के गुणस्थान ही नहीं है नारकियों के लिए। अर्थात इन प्रकृतियों का बंध विच्छेद नारकियों के संभव यानी नारकियों में जो पॉसिबल है ऐसे चार गुणस्थानों में नहीं होता। सब प्रकृतियों का बंध सादी अध्रुव है, अनादि और ध्रुव नारकियों का अभाव है। अथवा पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, वह जुगुप्सा वर्णादिक चार, अगर लघु उपघात, तेजस्व कारमान शरीर, निर्माण और पांच अंतराय, इनका मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का बंध है। ये वहां शादी कैसे घटित किया? क्योंकि उपशम श्रेणी से उतरकर नरक में प्रविष्ट हुए जीव में शादी व अध्रुव बंध देखा जाता है। यानी पहले उपशम श्रेणी चढ़ा हुआ है, बाद में अभी नरक में आया है तो उसके लिए वो शादी हुआ। शेष गुणस्थानों में ध्रुव बंध नहीं है, क्योंकि बंध विच्छेद को न करने वाले सासादन सम्य दृष्टि आदिकों का अभाव है। यानी जो सासादन वाले उनमें विशिष्ट उतने बंध विच्छित्ति होगी, मिथ्यात्व दृष्टि की भी उतने बंधन की विच्छित्ति होगी। शेष प्रकृतियों का बंध सादी अध्रुव ही है, क्योंकि वे प्रकृतियां अध्रुव बंदी हैं। ये ज्ञानावरण आदि की यहाँ पहले लिए थे, वो ध्रुव बंदी निरंतर बंदी वगैरह वगैरह लिए थे। इसमें चार प्रकार का क्या पॉइंट? देखो देखो तो ही तो आएगा ना। देखो यहाँ नरक में आने के लिए नरकायु का बंधन आवश्यक है। हाँ तो कभी भी पहले उपशम श्रेणी से उतर कर नीचे आया है, वो भले दो भव पहले भी क्यों ना आया हो, उसके लिए वो शादी हुआ है ना। हाँ क्योंकि हो सकता है कि उसी भव में आने की जरूरत नहीं, इमीडिएट नेक्स्ट ऐसा भी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा, मिथ्यात्व में गया, इतना खोटा परिणाम हुआ कि वो नरक नरकायु का फिर बंद हुआ। क्योंकि जब तक सम्यक दृष्टि है तब तक नरकायु का तो करेगा नहीं, और पहले नरकायु बांधी हो तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा नहीं, पांचवा गुणस्थान भी नहीं होगा तो उपशम श्रेणी का सवाल ही नहीं। ख्याल आता? तो कभी उसने उपशम श्रेणी मानकर बाद में कभी भी नरक में आया है, वो इमीडिएट नेक्स्ट भव में आने की जरूरत नहीं है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में अभी है वो, उसके लिए आवश्यक जो कुछ कंडीशंस है वो बन चुकी है पहले, परंतु एक बार वो उपशम से आया है ने, उसका वो शादी वहां से शुरू हुआ। जो उपशम श्रेणी चढ़ा ही नहीं आज तक, उसके लिए ज्ञानावरण का बंध अनादि से चल रहा है। एक बार उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद, चढ़कर उतरने के बाद बीच में अर्ध पुद्गल परावर्तन भी काम चला जावे, तो उसके लिए वो शादी हुआ कि नहीं बंद उसका? और ऐसे शादी वाला जो ऊपर जो है ना, दूसरे वगैरह गुणस्थान है उसमें वो शादी होती है, शादी बंध है। और अध्रुव है, अध्रुव है क्योंकि अभी वो अभव्य नहीं ना, उनके तो वो ध्रुव बंध रहेगा नहीं अभी उनके लिए। तो ये हमने जो उतनी प्रकृतियां देखी थी उसके तो अभी सारों के प्रश्नों के समाधान आ गए। अब ये नया सूत्र यहाँ बता रहे, उनको ऐसी प्रकृतियां ली थी कि जो पहले से चौथे तक हाँ जो बनती थी। अब यहाँ ये दूसरा ग्रुप बना रहे कि जो पहले और दूसरे दोनों गुणस्थान में बनती है, यानी दूसरे में विच्छित्ति होती है, ऐसे भी लिया यहाँ। देखो निद्दा निद्दा पहला पहला थीण गिद्धि अनंतानुबंधी कोदमान माया लोभ इथि वेद तिरिखाऊ तिरिख गई चौ ठनसन ठान चौ संगठन तिरिख गई पावगानु पुवी उज्जोव अपसत्थ विहाय गई दुभग दुस्सर अनादिज्य नीचा गोदानम को बंधो को अबंधो। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला हाँ लिया ना, स्यानुकृति लिया ना। दूसरे में विच्छुत्ति है इसलिए पहले और दूसरे दोनों गुणस्थान वाले इनको बंद करने वाले, तो ये तीन निद्रा ली। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ स्त्रीवेद तिर्यक आयु तिर्यक गति चार संस्थान चार सहनन तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी उद्योत अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र। कितनी हुई? 25। हमेशा जो हम दूसरे गुणस्थान की 25 प्रकृतियां गिनते हैं वे ही है। इन प्रकृतियों का कौन बंधक और कौन अबंधक है? यह सूत्र सुगम है। तो उसके उत्तर में कहते हैं मिच्छा इट्ठी शासन सम्मा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा अबंधा। मिथ्या दृष्टि इष्ट करना और सासाधन सम्यक दृष्टि बंधक हैं, ये बंधक हैं, शेष नारकी अबंधक है। र बराबर करना, यह नारकियों की बात चल रही नहीं इसलिए अन्य नारकीय बंधक है। शेष यानी तीसरे चौथे वाले बंद स्वामित्व के सब सूत्र देशामर्शक है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कहाँ से कहाँ तक इतना ही बतलाएंगे, बाकी जो प्रश्नों के उत्तर है वो निरंतर है, क्या शादी है, क्या स्वोदय से है, क्या पहले बंद विच्छित होते, वो सब देशामर्शक होने से उसमें से अभी बताएंगे। इसी कारण इस सूत्र से सूचित अर्थ की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। अनंतानुबंधी चतुष्क का बंद और उदय दोनों साथ में विच्छिन्न होते हैं। पहले प्रश्न का जवाब आया ना, कौन पहले विच्छित होती है, बंद की क्या उदय की, क्योंकि संसाधन गुणस्थान के चरम समय में अनंतानुबंधी चतुष्क का साथ ही बंधोदय विच्छेद पाया जाता है। यानी संसाधन गुणस्थान में है तब तक अनंतानुबंधी का उदय भी है और बंध भी है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है। देखो, हम ऐसा नहीं सोचना चरम समय में यानी दूसरे गुणस्थान के अंतिम समय के बाद मिथ्यात्व में जाता है तो वह अनंतानुबंधी का बंध कहाँ रुकता है, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं लेना। चरम समय में दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। दूसरे में से कोई ऊपर चढ़ने वाला है ही नहीं है, दूसरे में से रास्ता नीचे की ओर है। तो यहाँ चरम समय में यानी दूसरा गुणस्थान पलट कर पहले में गया, वो चरम समय नहीं लेना है। बंद विच्छित्ति में हमेशा ये रूल लेना कि भले वो वहाँ से ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी चले जाए, दूसरे गुणस्थान में बंद है, आगे कहीं भी नहीं है, तो उसको कहेंगे दूसरे में उसकी विच्छित्ति हुई। ये वो नियम से पहले में ही जाने वाला है और उसका बंद वहाँ भी चलने वाला है, तो उसका चरम समय ने पहले में जाने वाला का वो अंतिम दूसरे गुण से अंतिम समय, ऐसा नहीं उसका अर्थ लगाना। तो बंद विच्छेद पाया जाता है। स्त्यान ग्रद्धि आदि तीन, स्त्री वे तीर्यगायु तीर्यगति चार संस्थान चार सहनन तीर्यगति प्राज्ञानुपुरी और उद्योत, इनका नरक गति में उदय नहीं है। किसका उदय नहीं, पहले कहा तीन निद्राओं का, ना ही देवों में इसका उदय होता है, नहीं नारकियों में। तो ये निद्रा का जो कुछ सुख लेना है यहीं पर ले लो। सुख मान लिया ना हमने उसमें, क्योंकि सुखी की परिभाषा क्या है, बहुत देर तक सो के उठना, वो हमारे सुखा। वी वॉन्ट टू एंजॉय, क्या एंजॉय किया, बहुत देर तक सोए। तो स्त्यान ग्रुद्धि आदि तीन, इनका उदय ही नहीं है नरक गति वालों को, तिरंच और मनुष्यों में उसके उदय होता है। स्त्री वेद का नहीं है तो जाहिर है, यहाँ जो लिस्ट बताई उसकी बात चल रही है, पुरुष वेद को पहले लिस्ट में लिया था। अभी तीर्य गायु तीर्य गति चार संस्थान सहनन वगैरह, क्योंकि संस्थान भी उंडे संस्थान का ही उदय होता है, सहनन तो होता ही नहीं है। उद्योग तो प्रशस्त प्रकृति है और तीर्यंचों में पाई जाती है, तो उसका भी यहाँ उदय नहीं रहता, क्योंकि ऐसा होने से विरोध है। इसीलिए इन प्रकृतियों के पूर्व में अथवा पश्चात बंधोदय विच्छेद का विचार नहीं है। तो उनकी प्रकृतियों के बारे में, ये पहले बंधे विच्छित होता है कि पहले उदय की विच्छित होती है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इनका यहाँ उदय ही नहीं है। अब मार्गणा की बात हो रही है, तो विशिष्ट गति में विशिष्ट प्रकृतियों का उदय ही नहीं है, तो उसमें हम कहेंगे इसका बंध पहले के उदय पहले रुकता है, ये सवाल कहाँ पैदा होता है। यदि उदय होता, जैसे अभी अनंतानुबंधी की बात की, उदय हो है तो कहे कि बंध और उदय साथ में विच्छिन्न होता है, क्योंकि सत और असत वस्तु के सन्निकर्ष का विरोध है। सत यानी अस्थि स्वरूप और असत यानी नास्ति स्वरूप वस्तु, यानी जिसका सद्भाव है और जिसका अभाव ही है, ऐसी वस्तु एक साथ कैसे हो, सन्निकर्ष यानी उसकी उसका इकट्ठा रहना, कांटेक्ट में आना। आप कहेंगे वस्तु के दो धर्म तो एक साथ होते हैं ना, सत असत, वहां वो अपेक्षित धर्म होते हैं, पर की अपेक्षा नहीं है और स्व की अपेक्षा है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। सद्भाव रूप वस्तु और जो वस्तु ही नहीं है अभाव ही है उसकी, ऐसा तो कैसे साथ में होगा? जो है ही नहीं वो साथ कैसे रहेगी? ये धर्मों की बात अलग है, वो सत असत एक ही वस्तु के दो धर्म है, वो तो साथ हो सकते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं है। अब जिनका यहाँ उदय पाया जाता है उसकी बात बता रहे हैं। अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र का पूर्व में बंध विच्छिन्न होता है, पश्चात उदय, क्योंकि इनका उदय तो दारकियों में चारों ही गुण स्थानों में उदय है और बंध की विच्छित्ति तो दूसरे में होती है, क्योंकि सासाधन गुणस्थान में बंध के नष्ट हो जाने पर असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में इनका उदय विच्छेद पाया जाता है। अब ये ऐसे अप्रशस्त व्याय गति का उदय कहां तक पाया जाता है मालूम है? सामान्य में गुणस्थानों की बात, तेरहवें तक, परंतु यहाँ नारकी में चार ही गुणस्थान होते हैं, तो चारों ही गुणस्थानों में उसका उदय है। अब मार्गणाओं में आए ना हम, अभी गुणस्थानों में नहीं घूम रहे, तो विशिष्ट मार्गणा में जितने गुणस्थान हैं उतनी की बात यहाँ होगी। अब ये कौन पहले विच्छित्ति होती उसकी बात हो गई, अब स्वोदय से या परोदय से की बात चलेगी। अप्रशस्त विहाय गति दुस्वर और अनंतानुबंधी चतुष्क का स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। विशेष इतना है कि अप्रशस्त विहाय गति और दुस्वर का सासाधन गुणस्थान सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान में स्वोदय ही बंध होता है, स्वोदय से ही बंध होता है। देखो क्या कहते हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे। अनंतानुबंधी चतुष्क में कैसे लगाना है? या क्रोध का या मान का या माया का लोभ का उदय है और बनती सब है, तो स्वोदय क्रोध जो है, क्रोध का बंध चल रहा है, क्रोध के उदय में भी चल रहा है और लोभ के उदय में भी चल रहा है, तो उसको स्वोदय परोदय दोनों से बनती है कहेंगे। अब अन्य जो दुस्वर अप्रशस्त विहार गति की बात की, ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं, इसलिए इनका उदय हो तो हो, नहीं तो नहीं भी हो, ऐसा कहते हैं। प्रशस्त विहार गति का उदय हो रहा है ये बात नहीं बता रहे, ऐसा क्यों कहा? बोलो भाई, देवेंद्र भाई आप कह सकते हैं? नहीं समझे आपको? प्रश्न ऐसा है, इसको अध्रुवोदयी प्रकृति क्यों कही? क्योंकि हमने तो देखा था नरक में तो पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक तो अप्रशस्त विहार गति का ही उदय होता है, तो क्या ऐसा होता है जब चलते होगे तब इसका उदय है, बाकी बैठे तो नहीं हुए? नहीं है तो कैसा है? हाँ, बनने की कहाँ बात चल रही है, उदय की बात चल रही है। बनते हैं, बनने में तो उसको सांतर बंध कहा था, तो उदय में अध्रुव क्यों, क्या अध्रुवोदयी क्यों कहा? चलो मैं भी बताती हूँ। विग्रह गति में अप्रशस्त विहार गति का उदय है क्यों प्रशस्त का है? एक भी नहीं। हाँ, क्योंकि विहार गति का उदय है शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है, और दुस्वर का उदय भाषा पर्याप्ति पूर्ण तो जब उसका उदय नहीं है और बंध रही है तब हम क्या कहेंगे? वो परोदय से बन रही है, क्योंकि इनका तो पर्याप्त अवस्था में तो हर समय इसका उदय चल रहा है। हमने तो देखा था नारकियों को तो इसका ही उदय रहता है, परंतु विग्रह गति में नारकियों का उसका उदय नहीं है, फिर भी बंध चल रहा है, तो उसको कहेंगे ये परोदय से बन रही है। विशेष इतना है, अभी ये विशेष की भी बात बताएं। अप्रशस्त विहाय गति और दुस्वर का सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान में स्वोदय से ही बंध होता है, ऐसा क्यों? हाँ, इसमें विग्रह गति और अपर्याप्त अवस्था नहीं है, इसलिए सासाधन किसको होगा? पर्याप्तों को ही होगा, तो पर्याप्तों में इसका उदय तो होगा ही होगा, देखो ये जो क्यों ऐसा जो है ना उसका उत्तर इसमें नहीं, वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट जवाब दे देते हैं ये क्यों ऐसा। हमको अभी हम इतना सारा पढ़ चुके हैं तो हम उसका सोच कर उसका जवाब निकालेंगे तो अपना पक्का होगा। यानी इसको परोदय क्यों कहा, क्योंकि विग्रह गति में और अपर्याप्त अवस्था में उनका उदय नहीं है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नो सदा देत हो। अश्विन भाई।